ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. تو اگر ہم پہلی والی بات کو لیں کہ مشرکین مکہ اس وقت کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دعائیں کرنے لگے کہ اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دے، ہم ماننے والے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے، اے نبی آپ اللہ سے دعائیں کریں. اسی طرح لوگ اس وقت بھی کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے. مگر اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، اور مشرکین مکہ نے یہ جب کہا تھا تو اس وقت ان کو بھی نہیں فائدہ دیا. وہ اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا، جب یہ دعا کرنے لگے اللہ ہم سے یہ کھول دے دی یعنی دور کر دے، ہٹا دے یہ عذاب، ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ان سے یہ عذاب ہٹ گیا، کہ یہ جو قحط سالی تھی وہ ختم ہو گئی، تو پھر دوبارہ ویسے ہی ہو گئے، کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے. اسی طرح جو لوگ قیامت کے قریب جب لوگ یہ کہیں گے، تو یعنی جب ان کے اوپر ایسا آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ تو ہم سے دور کر دے، اب ہم ایمان لے آئیں گے، اب ہم ڈر گئے ہیں، اب یہ جب دیکھ لیں گے. لیکن اب ایمان لانا، اب مان لینا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب یہ بڑی نشانیاں آ جائیں گی. استغفر اللہ، انّا لہم الذکرا، اب کہاں ہے ان کے لیے نصیحت؟ اب ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ کیفا کے معنوں میں ہے نا، کیا کیسے اب یہ نصیحت، یہ جب اس سے اب جا کے جب مانے تو کیا مانے؟ وقت جاءہم رسول مبین، جبکہ ان کے پاس پہلے رسول تو آ چکا تھا نا، جس نے ساری مبین تھا وہ رسول، انہوں نے ساری باتیں کلیئرلی بتا دی تھی. اب جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم اب مان جاتے ہیں، اب ماننے کا کیا فائدہ؟ تمہارے پاس تو ایک رسول آیا جس نے ساری تمہیں باتیں بتا دی، تم نے تو اس کی بات پہ ہی ایمان نہیں لے کر آئے، اس نے ہر چیز تمہیں ایکسپلین کر دی تھی، کلیئر کر دی تھی، تم تب بھی نہ مانے اور اس کی مخالفت کرتے رہے. اور بعد والے لوگوں کے پاس بھی اللہ کے نبی کا پیغام تو آ گیا نا، تو پھر بھی نہیں وہ مانے. اب تمہارا ماننے کا کیا فائدہ؟ اب تم جو ایمان لاتے ہو، اب تم کہتے ہو اب ہم نصیحت پکڑ لیں گے، اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ دیکھیں یہ جو نصیحت پکڑنا ہوتا ہے نا، زندگی کو سٹریٹ کرنا، یہ نہ سمجھیں کہ ساری زندگی ہمیں ایسا ہی موقع ملتا رہے گا، ہم کہتے رہیں گے ہاں جی ابھی نہیں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو کسی نے آپ کے ٹائمنگ پہ نہیں چلنا کہ جناب آپ کو کب فرصت ملے گی، آپ بتائیے. آپ جب فارغ ہوں گی اور آپ کو جو ٹائم ملے گا نا، جس وقت آپ کو لگے گا کہ اب یہ ٹھیک ٹائم ہے، اس وقت ہم آپ کے لیے آ جائیں گے، ہم آپ کی ٹائمنگ سے چلیں گے. ایسا نہیں ہوگا، کوئی ہماری ٹائمنگ سے نہیں چلتا. اللہ کا نظام، نہ ہماری موت، نہ قیامت کا دن ہمارے ٹائمنگ سے نہیں چلے گا، نہ یہ نشانیاں ہماری ٹائمنگ سے چلنی. بلکہ نصیحت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا لے، ویل اینڈ گڈ. نہیں اٹھاتا تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اور مجھے موقع ملتے رہیں گے، اور یہ کہاں چانس جائیں گے، یہ تو یہیں پہ گھومتے رہیں گے، میرے ارد گرد ہی مجھ سے پوچھتے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. ایک دن آپ چانس مانگیں گے مگر چانس نہیں ملے گا. آج چانسز بکھرے پڑے ہیں میرے اور آپ کے راستے میں، ہم ان کو اگر آج اویل نہیں کرتے، ان اپرچونٹیز کو، ان باتوں کو، ان کو نہیں لیتے، ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ٹھوکر مار کے ادھر کر دیتے، ٹھوکر ماری ادھر کر دیا، کتنی دفعہ ہمارے پاس چانسز آتے ہیں، ہم توجہ ہی نہیں کرتے، وی ڈونٹ کیئر. ہمیں ایسے لگتا ہے پتہ نہیں یہی ملتے ہی رہنے ہمیں، جب میں 60 سال کی بھی ہوں گی تب بھی چانس ملتے رہنے ہیں مجھے، 80 کی بھی ہوں گی تب بھی. نہیں، کیا پتہ جب 60 سال کے ہوں اس وقت چانس ملے تو بستر پہ پڑے ہوں، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے. کیا پتہ جب 80 سال کے ہوں اس وقت عقل بھی سلامت ہو کے عقل ہی ماری گئی ہو اس وقت، اور کیا پتہ کہ جو 90 سال کے ہم ہو کے سوچتے ہیں اس وقت کر لیں گے نا، ہم ابھی تو چانسز ہیں، اس وقت بھی تو ہوں گے، کیا پتہ 90 سال کے ہو کے ہم زمین کے نیچے ہوں، زمین کے اوپر ہوں ہی نا. 90 سال جب گزرے تو ہمارا حال یہ ہو کہ ہم اب ہمارے چانس ہی بند ہو چکے ہوں، بک ہماری بند ہو چکی ہو، نہ جب عقل ماری گئی تھی تب کوئی چانس باقی رہتا ہے، نہ جب بستر پہ پڑ گئے تب کوئی چانس باقی رہا. آج چانسز ہیں جب صحت مند ہیں، عقل بھی کام کر رہی ہے، زندگی کی مہلت بھی ملی ہوئی ہے، تب پرواہ ہی نہیں ہے. परवाह ही नहीं कि क्या मुझे मिल रहा है, जैसे कि ये फॉर ग्रांटेड इनको लिया हुआ है, जैसे कि ये बस, जैसे हम कोविड में कितनी चीजों को हमने, हमें एहसास हुआ कि हमने फॉर ग्रांटेड ली नहीं थी, जैसे कि मिलना जुलना लोगों के साथ बैठना, मिलजुल के खाना खाना, मुसाफहा करना, हैंडशेक करना, कहीं जाना आना, ऐसे लगते थे गोस्ट टाउन्स में हम रह रहे हैं, यहाँ पे कोई बंदा बशर ही नहीं है, सब ऐसे दुबक के बैठे हैं घरों में, दुख सुख में किसी के काम आना, उस सब कुछ खत्म हो गया था जिसको हम समझते थे ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, मस्जिदों में जाना, हवाई जहाज के सफर करना, शादियों में ब्याहों में एक दूसरे के साथ होना, कोई फौत हो जाए तो उसकी पास जाना, उसके या बीमार है तो उसके पास जाके ज्यारत करना, उसकी ताजियत करना किसी से, सब चीजों को हमने यही समझा था ना, अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया ना कि कभी ऐसा ना समझना कि चांसेस ऑलवेज रहेंगे, हालांकि ये तो हमें कुछ लगते ही नहीं चांसेस, ये तो हमें लगता ही नहीं कि कोई बड़ी बात है, ये तो हमें लगता है हमारी दाएं हाथ का काम है, यहां से वहां जाऊंगी उससे मिल लूंगी, उससे चली जाऊंगी उससे बात कर लूंगी, हाज उम्रे पे चली जाऊंगी जब मेरी मर्जी होगी, पैसे तो मेरे पास है, सब चीज बंद हो गई थी ना। इस मिसाल से मैं आपको बता रही हूं कि ये जो जिंदगी में अमल के चांस है ना, ये भी बंद हो जाते हैं एक दिन, दोबारा नहीं मिलते, इनको फॉर ग्रांटेड ना लें, आज बिखरे पड़े हैं ना, ये हमेशा ऐसे बिखरे पड़े नहीं रहेंगे, आज आपको कोई पूछ रहा है ना, आओ ये नेकी कर लो, आओ इसके अंदर हिस्सा ले लो, आओ ये काम करते हैं, आओ ये सुन लेते हैं, आओ अपनी जिंदगी को संवार लें, ये हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन ये आवाजें भी बंद हो जाएंगी, हमारे कान बंद हो जाएंगे, अमल का वक्त खत्म हो जाएगा, और किसी सूरत में भी हो, जिंदगी जाने की सूरत में, किसी कोमा में जाने की सूरत में, अकल के फिर जाने की सूरत में, किसी सूरत में भी हो सकता है। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ताला फरमाता है अन्ना लहुम फिकरा, और देखें कयामत के दिन भी ऐसा होगा ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कल्ला इज़ा दुक्कत अल-अर्ध दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ्फन सफ्फा, जब देखो जब जमीन कूट कूट के रेजा रेजा कर दी जाएगी और तेरा रब आएगा और फरिश्ते भी सफ दर सफ, वजी अयोम इदिन भी जहन्नम, उस दिन जहन्नम भी लाई जाएगी, योम ए दिन यतज़क्करुल इंसान, इस दिन इंसान को याद आएगा, वह अन्ना लहु ज़िक्रा, वही वाली बात, अब क्या याद करने का फायदा, अब क्या फायदा, अब तुझे भूला हुआ सबक याद आया, अब जाके यकूलु या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, उस दिन मारेगा अपने आप को, चबाएगा अपने हाथ, कहेगा हाय मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ भेजा होता, हाय काश मैंने कुछ किया होता, वो अल्लाह ताला फरमाता है अन्ना लहुमु दिक्रा, अब क्या है इनके लिए नसीहत हासिल करना, अब क्या फायदा, अब निशानी जब सामने आ गई, अल्लाह अकबर, सबसे ज्यादा हसरत इसी बात पे होगी कि इंसान कहेगा काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, सुम्मा तवल्लौ अन्हु, फिर वो मुंह मोड़ गए उससे, किससे, इस रसूल से, वकालू मुअल्लम मजनून, फिर इन्होंने कहा ये तो सिखाया पढ़ाया दीवाना है, इसकी बातें हमने क्या सुननी है, सिखाया पढ़ा किसी ने इसको, जी सिखा दिया ऐसे ही आके हमें बातें बताता रहता है, मजनून है दीवाना है, इसकी क्या सुननी है। मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी कहीं, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मैंने लिखा हुआ था कि अगर हम सहाबा कराम के जमाने में चले जाएं तो हम कहेंगे ये मजनून है, ये तो दीवाने हैं, इनको क्या हो गया, यानी उनको दीन की खातिर जो कुर्बानियां कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को खत्म करके रख दिया अल्लाह रसूल की खातिर, तो हमें ये लगेगा ये दीवाने हैं, और अगर वो हमारे पास आज आ जाएं तो वो कहेंगे कि ये तो मुसलमान ही नहीं है, अल्लाह अकबर, तो वो कहते थे ये तो मजनून है, इन्ना काशिफुल आज़ाबी कलीनन इन्नकुम आईदून, बेशक हम हटाने वाले अजाब को थोड़ा सा, बेशक तुम लौटने वाले हो, इन्हें अगर उस वक्त का कहा जाए तो अगर तुम्हें मोहलत मिल भी गई तुम्हें अगर हम अजाब हटा भी देते हैं, ये कह दूर भी कर देते हैं थोड़ी मुद्दत के लिए, वह तुम फिर वही करोगे, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है ना कि ये यही करेंगे, इन्होंने नहीं हटना। और वाकई यही हुआ ना। और दूसरा माना, अगर हम धुएं से लें कि भाई वो वाला अजाब, इसको लोग कह रहे हैं कि अल्लाह ये धुआं दूर कर दे, ये दुखान दूर कर दे, हम तो बड़े बड़ी नसीहत ले लेंगे हम ये, तो उनको पहले तो कह दिया गया आप तो नसीहत का क्या फायदा, बड़ी निशानी कयामत की आ गई, अब तो सामने है कयामत, जब सूरज मगरिब से तलू हो जाएगा ना, तो कोई ईमान लाना किसी को फायदा नहीं देगा, फिर पे दर पे ये निशानियां पूरी होंगी। तो अब कहा जा रहा है कि अगर ये हम थोड़ी देर के लिए दूर कर भी देते हैं, इस अजाब को मौखर कर भी देते हैं, तो फिर ये उसी में लौट जाएंगे। अल्लाह ताला बता रहा है कि ये नहीं होगा कि अजाब लौटा दिया जाएगा, ये नहीं होगा कि वो खत्म हो जाएगा, मगर बताया जा रहा है कि अगर ऐसा अल्लाह ताला कर भी देना, तो फिर भी ये बाज नहीं आएंगे, फिर भी ये शिर्क की तरफ लौटेंगे और वही काम करेंगे जो जहन्नुम की तरफ ले जाने वाले हैं। और लोगों की हाल ये वाकई इस दुनिया में ऐसा ही रहा है कि, और आज भी है, वो उन्होंने भी ये किया था और आज भी है। हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, जब हम मुश्किल में होते हैं, अब हम अल्लाह ना करे किसी जहाज में बैठे हो, जहाज हिलना शुरू हो गया, उफ एकदम हमें तो तौबा इस्तग़फ़ार याद आ जाती, कलमा पढ़ना शुरू हो जाते हैं, इस तरह करते हैं, फिर बस अल्लाह तौबा, अब मैं बस उतरूंगी तो बस अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी बदल लेनी है, बस अब बहुत हो गई, उसके बाद उतरते हैं, उन्हें याद भी नहीं रहता, वो आगे लेने आए हुए हैं, चले गए घर, पार्टी टाइम शुरू हो गया और चलो बस खत्म, वो तो याद भी नहीं है कि जहाज में ऐसा हो। हाँ लोगों को बताते जरूर है, हाँ देखो ऐसा हो गया था, लेकिन ये नहीं याद रहता मैंने कोई वादे भी किए थे। इसी तरह आप देखते होंगे जब जब भी कोई जलजले की बात आती है तो क्या न्यूज आती, लोग अपने घरों से बाहर कलमा तैयबा का विर्द करते हुए निकल गए, तो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए उस वक्त तो याद आया, उसके बाद इस कलमे पे कितना चलना था वो नहीं याद है, उसके बाद अल्लाह तौबा कोई नहीं याद, हाँ मुसीबत आई तो कलमा तैयबा याद आया। इसी तरह जब हमें कोई हाजत होती है, हम कितनी दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह ये बीमारी दूर कर दे, मैं तो ऐसे हो जाऊंगी, मैं तो ये कर लूंगी, वो कर, मेरी बस जिंदगी अब उसके बाद तेरे लिए गुजरे, उसके बाद अल्लाह ताला सेहत दे देता तो क्या करते हैं? इस तरह अरे अल्लाह मेरे बच्चों की शादी हो जाए, बच्ची की शादी हो जाए, बस इतनी उसके लिए मन्नतें मानेंगे, हज उम्रे पे दुआएं करेंगे, जब रिश्ता हो जाता है तो शादी के दिन करते क्या है, अल्लाह ताला याद रहता है, उसे पहले ही एक दर्स करा के बस फारिग कर दिया, अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह को तो फारिग कर दिया, बस अल्लाह तुझे खुश कर दिया ना, हमने ये दर्स हो गया, दुआए खैर जी रखी भी है, वो भी किसमें क्या है जी, दुआ मांगे ये इनकी खुशियों के साथ जिंदगी गुजरे, उसके बाद सारी अल्लाह की नाफरमानी है, जिसके लिए से दुआएं कर रहे थे ना कि अल्लाह ताला इनकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरे, आए आप आके दुआए खैर कर जाए, अभी एक नया ही ट्रेंड शुरू हो गया भाई दुआए खैर हो रही है, उसके बाद दुआए खैर के बाद वो अल्लाह की नाफरमानी, वो अल्लाह की वो नाच गाने और वो बेहयाइयां और वो मिक्स गैदरिंग्स और क्या क्या नहीं होता, तब अल्लाह नहीं याद रहता कि उसके हाथ में मेरी डोर है और उसके हाथ के अंदर है ये सब कुछ, इनकी खुशियां और इनकी जितना इस रिश्ते का कायम होना सब उसके हाथ में, मैं उसको नाराज कर लूं जिसे अभी मैं बैठी दुआएं कर रही थी। तो ये हमारा अमूमी रवैया है, हम देखें तो सही कि जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है, वजीफे भी हो रहे होते हैं, इस्तिग़फ़ार भी हो रही होती है, अल्लाह का बड़ा जिक्र भी, तस्बीहात इतनी लंबी लंबी, आयत करीमा के खत्म और पता नहीं क्या क्या, लेकिन उसके बाद इन्नकुम आईदून, फिर तुम बार दोबारा लौटने वाले, जो ये मुश्किल खत्म हुई, बड़े अजाब को तो छोड़ें, ये छोटी छोटी मुश्किलों में भी हमारा हाल ये है कि हम वो सजदे में पड़े रहते हैं, तहज्जुदे में शुरू कर लेते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं, बस हमारा काम निकल आया ना, बस उसके बाद हमें क्या है। वैसे हम लोगों को बहुत कहते हैं लोग बड़े मतलबी होते हैं, हम कितने मतलबी हैं, खुद सोचें हम कितने मतलब, दुनिया बड़ी मतलबी है जी, मतलब के लिए मिलती है, ये बहुत गिला करते हैं ना, कभी हम अपने गिरेबानों में भी झांक के हम कितने मतलबी हैं, अल्लाह अल्लाह बहुत याद आता है जिस वक्त हमारी कोई मुश्किल होती है, और उस मुश्किल टल जाए तो फिर अल्लाह कितना याद रहता है ये बताइए। ये नहीं कि अल्लाह ताला को याद नहीं करना मुश्किल है, बिल्कुल याद रखें, उसी ने तो हमारे काम संवारने, लेकिन उसके बाद भी तो वही अल्लाह है क्या सोचते हैं कि ये एक ही मुश्किल थी, सांस बंद हो जाए तो वो भी तो एक मुश्किल है। वो सांस चल रही है उसका एहसास नहीं है कि वो भी तो मेरे अल्लाह के हाथ में है, मैं तो हर वक्त ही गिरी रहूं उसके आगे। यौम नबत शुल्पत शतल कुबरा, जिस दिन हम पकड़ेंगे बड़ी पकड़, अगर वो माना ले इसका कहत साली का, उनकी कहत साली का, दोनों माने हम लेके साथ चल रहे हैं ना, तो फिर जिस दिन हम बड़ी पकड़ पकड़ेंगे तो वो बड़ी पकड़ उनके ऊपर कौन सी आई? इन्ना मुंतकिमून, तो हम इंतकाम लेने वाले हैं, तो उनके ऊपर बदर में आई थी वो बड़ी पकड़। ये बदर में इनके बड़े बड़े सरदार मारे गए और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, बदबू आने लगी उनकी लाशों से भी, 70 बड़े काफिर। इसीलिए तो इनके घर घर मातम बिछ गया था और ये रोते फिर रहे थे कि हाय हमारे साथ क्या हो गया। ये अल्लाह ताला ने निशाने इबरत बना दिया कि कहां वो छोटी सी जमात जिसको तुमने एक्सपेल किया था मक्का से और उनको कुछ समझते नहीं थे, आज तुम्हारे इतने बड़े सरदार मारे गए। इन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था ना कि हमारा इतना, वो तो इतने तकब्बुर से जा रहे थे कि आज देखना हम मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटा के रख देंगे। इतने तकब्बुर साथ गाने वालियां लगी हुई, नाच हो रहे, शराबें पी जा रही, कई कई ऊंट जिबा किए जा रहे एवरी डे, और फिर खा रहे हैं पी रहे हैं और जैसे किसी पिकनिक पे जा रहे हैं। यान क्या हमने इनको मसल के रख लेना, जैसे हाथी चूंटी को मसल देता है, ऐसे समझा हुआ था। लेकिन उनका हाल क्या हुआ होगा सोचें, जिस वक्त आन की आन में एक दिन में उनके 70 बड़े आदमी, ये छोटी बात नहीं है, इसीलिए उसको यौमुल फुरकान कहा गया। उसने फर्क कर दिया था कुफर और इस्लाम के अंदर। अब देखो ये इतनी सी 313 लोग, और कहां तुम 1000 लोग आ रहे, ये इतनी सी जमात जिसके पास पूरे हथियार भी नहीं, कैसे तुम्हारे लोगों को भगा के रख दिया और बाकियों को कत्ल कर दिया और कैदी बना दिया, 70 कैद कर दिए गए। इनके लिए शेम का मकाम था, उस वक्त ही समझ वाले होते तो समझ लेते। तो कहा गया कि यौमा नबतुशुल बतशतल कुबरा, जिस दिन पकड़ेंगे ना हम बड़ी पकड़, तो इन्ना मुंतकिमून, तो हम इंतकाम लेने वाले, फिर तो हम तुमसे इंतकाम लेंगे, इसका बदला लेंगे जो तुम कर रहे हो। और अगर इसको कयामत के दिन से कहा जाए, हमने अगर धुआं लिया अलामत कयामत से, तो फिर जिस दिन कयामत आएगी ना, अभी तो धुआं ही है ना, जिस दिन बड़ी पकड़ आएगी ना उस दिन तुम्हें समझ आ जाएगी। हम फिर इंतकाम लेने वाले हैं, यानी सजा फिर अल्लाह ताला की तरफ से वो आएगी कि फिर कोई बच ना सकेगा। एक दिन बड़ी पकड़ का दिन है। वलकद फतन्ना कबलहुम कौमा फिरऔन, मैंने आपको जैसे बताया कि इन हवामीम में सब में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जरूर आता है, तो इससे पहले हमने फितने में डाला, आजमाइश में डाला। फितने से मतलब क्या? आजमाना, इतना आजमाइश होती है। और आजमाइश कबला हम, इनसे पहले कौमा फिरौन, कौमे फिरौन की, तो हम कहते हैं कौमे फिरौन तो बड़े ऐश के अंदर रहे, उनके तो बड़े बड़े मोहल्लात थे और वो तो बड़े, उनका उसका उनका डंका बजता था उस वक्त दुनिया के अंदर, के इतनी बड़ी इनकी सल्तनत और उनकी से के आगे कोई बोल नहीं सकता था, इन तहजीब तमद्दुन में इतने आगे थे, तो बड़े पावरफुल थे, तो फिर उनको कैसे आजमाइश में डाला गया? देखें आजमाइश हमेशा तकलीफों से नहीं होती, अल्लाह ताला नेमतें दे के भी आजमाता है, और इनकी आजमाइशें हुई कई तरह से हुई, अल्लाह ताला ने इनको नेमतें दी उससे भी आजमाइश हुई, फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर इनको मेंढक, खून, जुएं और जराद, रकुमर, तूफान, और इन सब चीजों से अल्लाह ताला ने इनको आजमाइश भी इनकी की, इनके ऊपर ये मुसीबतें भेजी ताकि ये संभल जाएं, लेकिन ये नहीं संभली। तो अल्लाह ताला ने इनकी आजमाइश की थी, फिर इनको इतना कुछ दे के भी इनको आजमाया कि अल्लाह की तरफ आ जाओ, फिर इनके ऊपर ये अजाब भेज के भी उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश की। वजह हम रसूल करीम, और उनके पास हमारा रसूल आया था जो इज्जत वाला रसूल था। कौन मुराद है, कौन आया था कौमे फिरौन के पास? मूसा अलैहिस्सलाम। तो यानी मूसा अलैहिस्सलाम एक करीम रसूल कहा गया, इज्जत वाले। इज्जत वाले किस तरह से? अपनी कौम में भी इज्जत वाले थे, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी उनके साथ कलाम करके, सबसे बड़ी बात ये कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला ने उनको ये इज्जत अता फरमाई कि उनसे डायरेक्ट कलाम फरमाया, इस दुनिया के अंदर किसी से ऐसा नहीं किया। क्या फिर अल्लाह ताला ने उनको ऊपर अपनी किताब नाजिल फरमाई तौरात, और फिर करीम थे, इज्जत वाले थे, उन अल्लाह ताला के हाँ उनकी बड़ी कद्रो मंजिलत थी, क्योंकि जो पांच उलुल अज़्म पैगंबर हैं, पांच पैगंबर हैं जो यानी उलुल अज़्म यानी टॉप के हैं वो अल्लाह ताला के नज़दीक। वैसे तो पैगंबर और भी हैं, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको उलुल आज़म पैगंबर कहा जाता है। तो ये उनमें से हैं, तो इनको अल्लाह ताला ने रसूल इनकी तरफ अल्लाह ताला ने रसूल करीम भेजे, बड़े इज्जत वाले रसूल। और मूसा अलैहिस्सलाम में और भी बहुत सारी सिफात थी, और उनकी सारी सिफात को कि वो सब्र करने वाले भी थे, अल्लाह ताला पे तवक्कल करने वाले भी थे, और भी उनके अंदर बहुत सारी सिफात थी, लेकिन शुक्रगुजार भी थे बहुत ज्यादा, अखलाक में भी बहुत अच्छे थे। तो ये सारियों को एक वर्ड में समो दिया गया कि वो करीम थे। अन अद्दू इलैया इबाद अल्लाह, के हवाले कर दो अल्लाह के बंदों को मेरे मेरी तरफ अल्लाह के बंदों को हवाले कर दो। अद्दू का मतलब क्या, पूरा पूरा हक अदा कर देना ना एक ही दफा, तो इनको मेरे साथ यानी भेज दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम दो मकासिद के साथ फिरौन के पास भेजे गए, और उसकी कौम के पास, किबती कौम, फिरौन की कौम किबती कहलाती है, मिस्री जो को ओरिजिनल वहां के थे। तो उनके पास दो चीजें दे के अल्लाह ताला ने भेजा, कि दो क्या मकासिद थे मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत के। एक कि फिरौन को कहा जाए कि तू खुदा नहीं है, एक अल्लाह की इबादत कर, और दूसरा मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दे। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ। अमीन क्यों कहा गया, क्योंकि रसूल तो सारे ही अमानतदार होते हैं, लेकिन यानी बताया गया कि मैं तुम्हारे पास वो पैगाम लेकर आया हूँ जो एज इट इज अल्लाह ताला की तरफ से, इसमें मैंने कोई खयानत नहीं की, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया, कुछ बना के नहीं तुम्हें पेश कर रहा खुद से। तो इसी में दीन की तालीम देने वालों के लिए भी मैसेज है कि जो भी अल्लाह का पैगाम आगे किसी को भी देने लगे, उनको चाहिए कि वो अमानतदार हों, हक को पहुंचाने में अपनी तरफ से बातें ना ऐड करते रहें कि मेरी मर्जी ये है तो मैं ये करूंगी, या मैं अपने फिरके को डिफेंड करने के लिए इस आयत को ट्विस्ट करके इसका मतलब ये से ये बयान करना शुरू कर दूं। नहीं, ये बहुत बड़ी अमानत है, इसके अंदर खयानत करना बहुत बड़ी यानी गुनाह की बात है। तो इसमें कोई कमी बेशी अपनी तरफ से नहीं कर सकते, ना रसूलों ने की, ना जो रसूलों का मिशन आगे लेकर चलने वाले हैं, जो दाई दीन है, उलामा है, वो भी इस चीज को समझें कि उन्होंने बात एज इट इज पहुंचानी है, अपने बायसेस, अपनी जो पसंद या नापसंद को एक तरफ रख दें, अल्लाह की बात को इंसानियत तक जैसे आई वैसे आगे कर दें। हमारा काम नहीं है कि हम उसके अंदर कुछ चीजें मिला मिला के और लोगों को जरा ज्यादा ज्यादा इसको किसी चीज को सीरियस करना या ज्यादा किसी चीज को हल्का करना, ये हमारा काम नहीं है। वह अल्लाह तआलू अल्लाह, और ना तुम सरकशी करो अल्लाह के मुकाबले में। तुम किसके मुकाबले में आ रहे हो, वो तो तुम्हें अल्लाह की बात बता रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी बात तो नहीं बता रहे। अब क्यों यहाँ पे इस कौम का जिक्र आया, क्योंकि मुशरिकी ने मक्का अपने आप को बहुत बड़ी चीजें समझते थे, तो उनको बताया गया कि देखो एक तुमसे पहले भी कौम गुजरी है ना, कौम फिरौन, उनके पास भी रसूल आए थे, फिर उन्होंने आके क्या फरमाया, और फिर जब इन्होंने नहीं माना तो इनका अंजाम क्या हुआ, ये सारी बात इस आज की जो अब रेस्ट ऑफ द लेसन है उसमें यही बात कही जा रही है कि तुम अल्लाह के मुकाबले में सरकशी करते। क्योंकि याद रखें, जो रसूल है या जो दाई दीन है या कोई आलिम दीन सच्चा वाकई हक पे जो है, वो आप तक जो बात पहुंचा रहा है वो उसकी बात नहीं है कि आप कहें हाँ हमने क्यों उसकी बात सुननी, आप खुद ही अपनी बनाते फिर रहे हैं, ये मौलवियों की अपनी बनाई हुई बातें। कभी जो भी कोई उलमाए हक होंगे वो कभी अपनी तरफ से आपको बातें नहीं बताएंगे, वो अल्लाह की बात को ही आप तक पहुंचाएंगे, और उस बात को रद्द करना, आप उनकी बात को थोड़ी रद्द कर रहे हैं, वो कोई अपने बच्चों की बातें नहीं कर रहे, वो अपने घरों की बातें नहीं कर रहे, वो आपको अल्लाह की बात जो बताते हैं वो अल्लाह ताला की बात को रिजेक्ट करना है, अगर उन्होंने जो बात बताई उसको आपने रिजेक्ट किया। हाँ, होना चाहिए आलिम हक, उलमाए सू नहीं, उलमाए सू भी होते हैं। तो खुद को बड़ी चीज समझना अल्लाह के फरमान के आगे, खुद को समझना कि मेरी बात ज्यादा सही है, या मैं इस बात को क्या समझूं, या जो पैगंबर की बात आई है, रसूल जो पैगाम लेकर आया है, हदीस आप तक पहुंचाई जाए, या अल्लाह के कुरान में से कोई आयत पहुंचाई जाए, और इंसान सोचे लो ये क्या बात हुई, लो ये क्यों ऐसे है, इस तरह की बातें करना, तो या वो सुनाने वाले को तो नहीं कुछ कह रहे, अल्लाह की बात के आगे फिर सरकशी करना है ये। और यही उन्होंने किया। मूसा अलैहि सलाम तो उन तक पैगाम अल्लाह का लेकर आए ना, भाई मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दो, उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। तो वो किसके आगे सरकशी कर रहे हैं? अल्लाह के आगे। इन्नी आतीकुम बिसुल्तानि मुबीन, बेशक मैं लाया हूं तुम्हारे पास खुली दलील। खुली दलील क्या थी? वो जो दो निशानियां थी। सुल्तान, मैंने आपको बताया ना, ऐसी दलील होती है सुल्तान जिसका आगे कोई जवाब ना दे सके, जो इतनी खुली हो कि कोई ये ना कह सके कि ये तो मैं मानता ही नहीं, ऐसे ना कोई कह सके। बिल्कुल वाजे हो, जो जैसे अब सूरज निकला हुआ है तो आप कहेंगे मैं तो मानती नहीं, लेकिन ये बिल्कुल खुली दलील है कि ये दिन का वक्त है। ठीक है, अच्छा एक तो ये माना है कि ये सुल्तान मुबीन खुली बिल्कुल, और वो क्या थी? आसा और यदे बैदा। आसा जो सांप बन जाता था और उनका हाथ जो रोशन हो जाता था, बगल में डालते थे। तो और एक माना इसका ये भी है कि अल्लाह की बारगाह में खुद को बड़ा ना समझो, अल्लाह के खिलाफ बगावत ना करो। का मतलब क्या है? अल्लाह की बारगाह में खुद को बड़ा ना समझो, ये बगावत है। दूसरा माना, अल्लाह पर बोहतान ना बांधो, ये नहीं, ये अल्लाह ताला ने तो बात कही ही नहीं है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है असल में? कि अल्लाह ताला की बात के आगे खुद को झुका दो, सरकशी ना करो, ये मतलब है। ये रिक्वायर्ड है हर एक इंसान से, सिर्फ उनसे ही नहीं, कि वो अल्लाह ताला की बात आ जाए ना, अल्लाह तआलू अल्लाह, सरकशी मत करो अल्लाह के मुकाबले में। क्या ये सिर्फ फिरौन की कौम के लिए था या हर जमाने के लोगों के लिए? हर जमाने के लोगों के लिए, कि तुम अल्लाह ताला की बात आ जाए, उसका हुक्म आ जाए, उसकी कोई कोई फैसला आ जाए, तो उसके आगे खुद को झुका दो। समय ना हो अता ना करो, अकड़ ना जाओ कि जो नहीं नहीं जी, हम जो कह रहे हैं वो सही है, हमें तो ये समझ आई है, मेरी अकल तो ये कहती है, साइंस तो वो कहती है, हम तो ये नहीं मानेंगे। जब साइंस नहीं प्रूव कर रही इसको तो कैसे मान लें? नहीं, झुक जाओ, क्योंकि तुम गुलाम हो, और गुलाम का कभी भी ये उसको जेब नहीं देता कि वो अपने आका के आगे खुद को बड़ा समझे या खुद सर उठाए। तो हर वक्त झुके रहना है, इसीलिए हम नमाज में भी झुकते हैं अल्लाह ताला के आगे, झुक झुक के इजहार करते हैं इस बात का, अल्लाह हम तेरे आगे झुके हैं, अल्लाह हम तो कुछ भी नहीं है, या अल्लाह हम क्या चीज है, हमने तो अपना माथा भी तेरे आगे जमीन के ऊपर रख दिया, अपनी नाक रगड़ रहे हैं जमीन के ऊपर, या अल्लाह हम क्या है, हम तो बड़े हकीर हैं, बहुत छोटे हैं, मेरी अकल छोटी या रब, ये जो दिमाग है इसको भी जमीन पे रखते हैं कि नहीं रखते? जब सार जमीन पे रखा होता दिमाग रखते हैं ना, फिर उसके बाद उठ के इसके बाद मुझे तो समझ ही नहीं आती इसकी दलील क्या है, ये तो मुझे दलील मुझे अपील ही नहीं करती। अभी तो आपने अपना सर जमीन पे रखा हुआ था उस अल्लाह के आगे, जिसको आप अल्लाह अकबर, सारी नमाज तो अल्लाह अकबर ही कहते कहते शुरू से, कितनी दफा अल्लाह अकबर उसमें कहते हैं, स्टार्ट ही अल्लाह अकबर से है, फिर भी अपने आप को बड़ा समझा और अपनी अकल को बड़ा समझा, फिर भी अकड़ते फिरते हो कैसे? आप अपने जब इजहार करते हैं नमाज में झुकने का, और देखिए जैसे हमने हाथ बांधे होते, ये किसकी सूरत हाल होती? एक बादशाह की नहीं होती, किसकी होती है? नौकर की, गुलाम की। खड़े होने का अंदाज भी तो देख लें, हाथ बांध के खड़े हुए, ये नमाज सिखाती है कि गुलामी का इजहार करो। रुकू में जाते हैं तो आप गुलामी का इजहार कर रहे हैं, सजदे में जाते हैं गुलामी का इजहार कर रहे हैं, ये अल्लाह कुछ भी नहीं हूं, अल्लाह कुछ भी नहीं हूं, मैं तो जलील हूं, हकीर हूं, कुछ नहीं तेरे आगे, अल्लाह बड़ा तू ही, अल्लाह बड़ा तू ही, अल्लाह बड़ा तू ही, तू ही अल्लाह, तू ही अजीम, तू ही हर ऐब से पाक, ये सारा वक्त ये कहते रहते हैं। नमाज से उठ के कहते हैं जी मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मेरा घर मेरी मर्जी, मेरे बच्चे मेरी मर्जी, मैं तो हर चीज में मेरी मर्जी है भाई, तुम तो कहते थे अल्लाह अकबर है, समझा ही नहीं ना नमाज को भी, इसलिए सारा वक्त अल्लाह अकबर करते रहे, और उसके बाद अपना आप अकबर है नमाज से उठे तो, यूं ही सलाम फेरा, मैं अकबर हूं जी, अल्लाह तालु अल अल्लाह, मत सरकशी करो अल्लाह के आगे, के सरेंडर कर दो खुद को, झुका दो खुद को, यही इस्लाम है, सरेंडर करना अपने आप को, और उसके आगे बगावत ना करो, खड़े ना हो जाओ, अपने आप को बड़ी चीज ना समझो। मैं तो तुम्हारे पास, उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हारे पास खुली निशानी लेकर आऊं, वह इन्नी औस्तु बि रब्बी व रब्बिकुम अन तरजुमून, और मैं पनाह ले चुका हूं अपने रब की और तुम्हारे रब की कि तुम संसार करो मुझे। एक्चुअली उन्होंने, फिरौन और उसकी कौम ने इनको संसार करने की सीक्रेट प्लानिंग बना ली थी कि इनको पत्थर मार मार के हम मार देंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की इस धमकी के मुकाबले में फरमा दिया कि मैं पनाह ले चुका हूं अपने रब की, वो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी वही रब है, तुम्हारा रब कोई और नहीं है, तुम्हारा भी वही रब है कि तुम संसार करो मुझे, इससे मैं अल्लाह की पनाह ले चुका हूं। और सुबहान अल्लाह, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। अब फिरौन की ताकत हुई कम नहीं थी, जमीन पे बहुत बड़ी थी ना, हम जानते हैं उसके एक इशारे के ऊपर जब बच्चे जिबा हो जाए और कोई चूं तक ना करे इतने बड़े जुल्म को देख के, और वो जादूगरों को सूली चढ़ा दे, कहा जाता है 70,000 जादूगर थे, यानी बहुत बड़ी तादाद थी, उनको सूली चढ़ा दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, अपनी बीवी को कैसे उसने शहीद करा दिया, कोई बोला ही नहीं। सोच लें फिर उसका क्या, उसका था, आगे भी आता है कि वो कितना जालिम था। उस वक्त उसके दरबार में साफ तौर पे कह देना, मैं तो, मेरा रब तो अल्लाह, क्योंकि वो कहता था अना रब्बुकुम अल्अला, तो तुम्हारा भी रब ये नहीं है फिरौन, तेरा भी रब वो अल्लाह है और तू रब नहीं है, और इन लोगों का रब भी अल्लाह है, कुम तुम्हारा सब का रब अल्लाह है, और मैं उसकी पनाह लेता हूं तुम्हारी इन धमकियों के जवाब में। अब देख लें, जब उन्होंने अल्लाह की पनाह ले ली तो फिरौन उनका कुछ भी बिगाड़ ना सका, हालांकि जो ये सब कर सकता था उसके लिए क्या मुश्किल था, एक मूसा अलैहिस्सलाम को एक ठिकाने लगा देना, उनको कत्ल करा देना, हारून अलैहिस्सलाम को कत्ल करा देना, कोई उसके लिए मुश्किल तो नहीं था, लेकिन वो उन पे हाथ ना डाल सका थ्रू आउट। अब ये देखते हैं, क्योंकि अल्लाह की हिफाजत में आ गए थे। इंसान को हमेशा अपने आप को अल्लाह के हवाले करना चाहिए, उसकी हिफाजत में आना चाहिए, क्योंकि उसकी हिफाजत से बड़ी कोई हिफाजत नहीं है। हर फितने से, हर आजमाइश से, हर किस्म की चीज से ना, कोई शर भी है जो मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह लेती, अपने बच्चों को भी अल्लाह की पनाह में दे, वो स्कूल जाने लगे अल्लाह तेरी पनाह में देती हूँ, अल्लाह मैं तो नहीं कुछ कर सकती, मेरी मैं घर में भी हूं तो मैं इनकी क्या हिफाजत कर सकती ना, घर में भी वो किस को चीज को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता होता, हम नहीं जान सकते, हम इनकी रखवालियां 24 घंटे नहीं कर सकते। अल्लाह तेरी हिफाजत में देती, अल्लाह मैं अपने आप को भी तेरी हिफाजत में देती हूँ, क्योंकि क्या फितने आगे, क्या आजमाइशें आ रही हैं, क्या चीजें हैं, क्या सा शर है जिसमें मैं पढ़ने वाली हूँ, या जिसका मुझे पता ही नहीं, मैं उसको खैर समझ रही हूँ, वो शर है, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती। जब अल्लाह के पैगंबर अल्लाह की पनाह में आ रहे हैं तो हम क्या चीज हैं, हम खुद बच सकते हैं क्या, कभी नहीं। ए अल्लाह मुझे तेरी पनाह की जरूरत है, जिससे बड़ी हिफाजत कोई नहीं हो सकती, तो अपने आप को अल्लाह की पनाह में देना जरूरी है। और यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल भी पता चलता है, ए मैंने बस अल्लाह की पनाह में दे दिया, अब नहीं मुझे परवाह, फिरौन मैं तो अल्लाह की पनाह में हूं, तुम संसार करना है मुझे करो, अपना काम करो, मैंने तो अल्लाह की पनाह ले ली, वो मुझे बचाएगा, यानी ये इतना यकीन है उनको, भागे नहीं, चीखे चिल्लाए नहीं, रोए नहीं, ये नहीं कहा कि हाय नहीं ऐसा ना करना, हालांकि वो कितना पावरफुल था। तो डरना किसी चीज से नहीं, अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे। वह इल्लम तुमिनू ली, और अगर नहीं तुम मानोगे मेरी बात, फातजिलून तो छोड़ दो मुझको, ये कौन कह रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो ठीक है ना मानो, लेकिन मुझे अकेला तो छोड़ दो, यानी अब मुझे नुकसान तो ना पहुंचाओ, या मेरे पीछे तो ना पड़ो, या मेरे मिशन को तो ना रोको, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरा काम करने दो, मेरे रास्ते से हट जाओ, फदा रब्बहू, फिर उसने दुआ की अपने रब से, किसने? मूसा अलैहि सलाम ने। क्या? अन्नहा उलाई कौम मुजरिम, ए अल्लाह ये लोग तो मुजरिम कौम है। अल्लाह अकबर, ये एक दिन में थोड़ी उन्होंने कर ली थी, मैं कई साल गुजरे, मूसा अलैहि सलाम दावत देते रहे, इसके मजालिम भी खत्म ना हुए, फिरौन की सरकशी, उसकी जुल्म, इनको बर्दाश्त करते रहे मूसा अलैहि सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल कैसे बर्दाश्त करती रही, किसी तरह से ये मान के नहीं देते थे। इनके ऊपर वो जो मेंढकों, टिड्डियों और खून और ये तूफानों का अजाब आया, उसके बाद भी ना माने, निशानियां देख के भी ना माने, कि यदे बैजा और वो असा को देख के ही मान जाते, कोई चीज तो मानते, हर दफा वादे करते थे हम मान जाएंगे, अगर ये अजाब हमसे हटा दिया हम मान जाएंगे, हर दफा वही डगर। कितना समझाया, कितना बताया, लेकिन उसके बाद मूसा अलैहि सलाम ने फिर अल्लाह से ही दुआ की, जैसे नूह अलैहि सलाम की सूरह नूह के आखिर में दुआ थी ना, रब्बे फिर ली वली वाली दैया वल मिन मन दखला बैती मोमिन लिल मोमिनीन वल मोमिनात, वो भी दुआ करते हैं इसी तरह मूसा अलैहि सलाम ने, ए अल्लाह बस, अब ए अल्लाह बस, जो नूह अलैहि सलाम है उनकी उससे पहले दुआ आती है, ये तो आखिर में है, उससे पहले दुआ आती है कि अल्लाह अब इनमें से किसी को ना छोड़ना, किसी काफिर को ना छोड़ना, वरना या अल्लाह ताला ये और तेरे बंदों को भटकाएंगे और इनके आगे औलाद भी काफिर ही पैदा होगी, अल्लाह अब इनमें से किसी को ना छोड़ना इस जमीन के ऊपर। तो इसी तरह मूसा अलैहि सलाम ने भी दुआ की कि अल्लाह अब ये मुजरिम कौम है, इन्होंने नहीं अब्बास आना। और सूरह यूनुस में इस दुआ की तफसील भी मिलती है कि अल्लाह मैं अपने, कि मूसा अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मैं अपने रब और तेरे रब की पनाह लेता हूं हर इस बात से, कि जो हर उस मुतकब्बिर से जो यौम हिसाब पर ईमान नहीं रखता। तो वो डिटेल वहां पे है कि इन्होंने कैसे दुआ की। तो अल्लाह ताला ने फिर उस वक्त फरमाया था जब मूसा अलैहि सलाम ने ये दुआ कर दी, और पैगंबर ये दुआएं जो ऐसी होती है ना अपनी कौम के खिलाफ, वो उनका लास्ट हरबा होता है, बस लास्ट चीज होती है, उसके बाद फिर जब वो दुआ कर देते हैं तो बस उस कौम का बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर अजाब ही आता है उनके ऊपर। अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, फिर असरी भी इबादी लैन इन्नकुम मुत्तबाउन, आप निकल जाए मेरे बंदों को लेके रात के वक्त, असरी रात के वक्त सफर करना, रात के वक्त आप निकले आप पीछा किए जाएंगे, ये भी बता दिया गया कि इन्होंने आपको छोड़ना नहीं है, फॉलो जरूर करेंगे आपको। और रात के बाद क्यों सफर किया जाता था, इसमें एक फायदा ये होता कि अगर दुश्मन है कोई आपका तो रात के वक्त, चूंकि रात ढांप लेती है इंसान को, तो रात के वक्त दुश्मन नहीं देख पाएगा, नहीं आ पाएगा, रात पर्दे का भी तो काम करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात के पहले पहर सफर किया करो, बिलाशुबा रात के बाद जमीन लपेट दी जाती है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात के पहले पहर सफर शुरू किया करते, क्योंकि सहरा का सफर होता था ना, ठंडी रातें होती थी, सवारियां भी तेज चलती थी, प्यास नहीं लगती थी, लोग भी आसानी से सफर कर लेते थे। तो फरमाया जमीन लपेट दी जाती है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ऊपर अमल करते हुए रात के बाद सफर कर सकते हैं। तो उनको कहा गया आप रात के वक्त चलें और आपको पीछा किया जाएगा। वतरिकिल बहरा रहवन, और फिर जब मुख्तसर यहाँ पे बात, जैसे कि हमें ये सारा किस्सा पता ही है पहले से, तो हमें पता है कि जब वो चले तो इनका पीछा किया गया, जब उनको एहसास हुआ कि ये लोग तो भाग गए, तो सोचें कि फिर कौमे फिरौन के ऊपर क्या गुजरी होगी, उन्होंने कहा कि हम तो इनको छोड़ेंगे नहीं, और जब इनके पीछे दौड़ाए उन्होंने अपने घोड़े तो जल्दी ही इनको पा लिया, और आगे समंदर और पीछे फिरौन का लश्कर था, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए समंदर के अंदर रास्ता खोल दिया, इनको फरमाया कि अपना आसा समंदर पे मारे, और वहां से जब गुजर गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया छोड़ दें समुंदर को राहवन। ये उस वक्त की बात है कि मूसा अलैहि सलाम क्या चाहते थे कि मैं आसा दोबारा मारूं ताकि वापस समुंदर हो जाए और ये हम तक ना पहुंच सके, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह ताला की प्लानिंग डिफरेंट थी ना, अल्लाह ताला को पता है अलग छोड़ने में क्या है, वो जी आ जाएंगे अभी, हमारे कोई पीछा कर रहा है तो उसके लिए रास्ता खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, वो पीछे आ जाएगा, यहां तक पहुंच जाएंगे। फरमाया नहीं, इन्नहुम जुंदु मुगरकून, ये तो गर्क होने वाले। फिर उसके बाद वो वाकई गर्क हो गए। राहवन क्या है? सुकून के साथ, मौजें ठहर जाएं, इसको ठहरा रहने दो ऐसे। अल्लाह हू अकबर। वो सब गर्क हो गए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कम तरकू मिन जन्नातिम व उयून व जुरूइम व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन। अल्लाह हू अकबर। अल्लाह ताला ने कम पूछ के कितने कितने, ये नहीं कि सवाल किया जा रहा है हमसे कि गिन के बताओ कितने उन्होंने छोड़े हैं बागात या चश्मे, बल्कि ये कम जो होता है ना बाज दफा कसरत के लिए भी आता है, कितने यानी बेशुमार, और हौलनाकी की खबर के लिए भी आता है। कैसी हौलनाक खबर है ये सवाल नहीं है, कैसी बात है कि उन्होंने कितने छोड़ दिए, जन्नात मायून, कितने बागात, कितने चश्मे। अब देखे ना आन की आन में ये हुआ, अब उन्होंने थोड़ी सोचा था कि हमने तो वापस ही नहीं आना, वो तो अपने घरों से इतने पैनिक में निकले, उन्होंने कहा बस इनको हम अब खात्मा ही करेंगे, चलो निकलो, ने तो सोचा था इनको लेकर आते हैं हम पकड़ के, तो ये किधर हमारी पकड़ से बच सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, उल्टा गर्क हो गए, किसी को वापस आने, अपने जो भी जो अपने बागात, अपने तायुशात, अपनी खेतियां, मकामे करीम से मुराद है कहा जाता है कि जो इनके जो स्टेज टाइप नहीं बनाए होते चीजें, एक मतलब ऊंची जगह जहां पे ये बड़ी शानो शौकत के साथ बैठा करते थे, या फिर दूसरा इसका माना उलमा ने ये किया कि जो बड़े इनके सजे सजाए घर थे वो भी मकामे करीम है, या फिर जो बादशाहों की मजलिसें थी, मसनदें थी, ऊंचे ऊंचे तख्त उनके बिछे होते थे वो मकामे करीम है, या जो इनके रिजॉर्ट्स थे वो मकामे करीम, यानी बड़ी मतलब मकामे करीम बड़ी इज्जत की जगह, इज्जत वाले मकामात जो इन्होंने अपने बनाए हुए थे, कौन चाहता है उसको छोड़ के जाना, लेकिन देखो कितने ही इन्होंने छोड़ दिए वहां पे, उसके बाद कौन आने वाला, कोई भी नहीं, ये ऐसे ही उनको छोड़ के चले गए। हालांकि इंसान का बस हो तो कभी भी ना छोड़ के जाए, और देखें वैसे भी जब इंसान की मौत आती है वो घर बार, अपने कपड़े, अपनी गाड़ियां, अपनी जॉबें, अपने बड़े बड़े बिजनेसेस, अपनी औलादें, अपने जो उन्होंने बड़े बड़े मकानात मोहल्लात बनाए होते हैं, या जो ऐश की चीजें होती हैं उनकी, वो सब छोड़ के चले जाते हैं। बैंक बैलेंसेस इतने इतने, लॉकर्स में क्या क्या रखा होता है, बाद में जाके लोग निकालते हैं कहते हैं अल्लाह क्या क्या इस बंदे ने जमा किया हुआ था, वो शानदार अपना सब कुछ, जो सब चीजें वैसी की वैसी रह जाती हैं, कितने ही छोड़ दिए कि किस लिए हमें बताया जा रहा है। वो नेमते, वो आराम की चीजें जिनमें वो खुश रहते थे, ऐश करते थे, अचानक जब मौत ने दबोच लिया, देख लो क्या इससे तुम इबरत नहीं सीखते कि ये देखो क्या अंजाम होता है इंसान का। ये तो जालिम थे तो इनका अंजाम ऐसे, अल्लाह ताला ने फरमाया इसी तरह छोड़ जाते हैं लोग, इसी तरह उनका अंजाम होता है। और उस नाहा कौमन आखरीन, और एक और कौम ने उनकी जगह ले ली, उनके वारिस बन गए। बाज कहते हैं कि बनी इसराइल ही जब उसके बाद यानी शाम की सरजमीन पे उनका कब्जा हो गया था, हुकूमत हो गई थी सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, तो उनकी हुकूमतें यहाँ मिस्र तक पहुंच गई थी। बाज ने कहा कि कुछ बनी इसराइल रह गए थे उनकी हुकूमत थी, बार क्या जो भी थे, लेकिन एक दूसरी कौम ने इनकी जगह ले ली। लेकिन इबरत का मकाम इसमें ये है कि देखें इंसान अपनी सारी जिंदगी इन्हीं चीजों के पीछे गुजारता है ना, कि मैं बस अपने लिए बड़े घर बना लूं, आलीशान घर हो मेरा, उसमें इतनी नेमतें हों, उसमें ऐशो आराम के सारे सामान मैं जमा कर लूं, और फिर मेरा एक बड़ा अच्छा गार्डन भी होना चाहिए जिसमें ऐसे पानी भी जा रहा हो और ऐसी भी चीजें हों, और इसी के पीछे भाग भाग के अपनी जिंदगी गुजार देता है, इतना भागता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि कब मौत आ गई, और फिर जूं ही मौत अचानक से आती है और उसको दबोचती है ना, सब पड़ा रह जाता है। आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, एक बंदा दुनिया की हर चीज उसने कमा ली है, हर चीज, हर जैसे यानी बादशाहत उसके पास है, उसके पास ऐशो आराम है, उसके पास माल इतना है, जो चीज उसने ख्वाहिश की उसको मिल गई, आज के दिन उसको मिल गई और इधर मौत आ गई, तो कौन सी चीज है जो उसके लिए फायदा मंद रह गई, वो हारा या जीता? आप तो कहते हैं जीत गया, आप तो समझते हैं ना उसको जीता हुआ, कि देखो जी कितना खुशकिस्मत है। जब मौत आ गई तो सब कुछ जीरो नहीं हो गया, फकीर हो गया वो। अब तो जो अमल है बस वही है, ये शानो शौकतें, बादशाहतें, ओहदे, पैसा, जायदादें, ये क्या रह गई, क्या वर्थ इनकी रह गई, ये जीरो नहीं हो गई। इसीलिए याद रखे, मौत ना इन सारी चीजों को क्या करती है, मल्टीप्लाई विद जीरो। जो मैथ समझते हैं उनको पता है, जिस चीज को मल्टीप्लाई करें जीरो के साथ, वो चाहे बिलियन भी हो ना, बिलियन ट्रिलियन को भी मल्टीप्लाई बाय जीरो करें ना, तो उसका आंसर क्या होता है, जीरो। ये है मौत, मल्टीप्लाई विद जीरो कर देती है हर चीज को। इंसान के कुछ भी ये साथ नहीं जाता, कितनी शॉपिंग पे देर लगाते हैं, कितनी देर बैठे रहते हैं, एक एक चीज को पसंद करते हैं, ये नहीं वो नहीं, ये ऐसे नहीं वैसे, और उसके बाद वो चीजें पा भी लें और मौत भी आ गई तो क्या पाया। कारोबारों के लिए कितने हलकान हैं, जॉबों के पीछे कितने हलकान हैं, और पैसा आ जाए और पैसा आ जाए, फिर क्या करोगे, फिर और बड़ा घर लूंगी, फिर और क्या करोगे, फिर एक समर होम भी लूंगी, फिर और क्या करोगे, फिर वहां सैर के लिए भी जाऊंगी, फिर और क्या करोगे, फिर और जेवर कपड़ा और लूंगी, और ब्रांड नेम लूंगी, और ज्यादा मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, और ज्यादा मेरे पास ऐशो आराम की चीजें होंगी, फिर क्या करोगे अगर मौत आ गई तो। और वो तो आनी है, सारी खुशहालियां खत्म हो गई उनकी, लेकिन इन्हीं चीजों के पीछे वो भागे फिर रहे थे ना, इन्हीं चीजों के पीछे वो जुल्म करते थे। फिर उनको ये था मेरी बादशाहत चली जाएगी, हाय मूसा का पर ईमान ले आया तो ये तो बादशाह ये खुद बन जाएगा, मेरा क्या रह जाएगा। मुशरिकीन मक्का को भी ये था हमारी सरदारियों का क्या फिर बनेगा अगर हम इन पे ईमान ले आए, हमारी सरदारियों का क्या बनेगा, वो किधर जाएंगी, हम तो फिर किसी के अंडर हो जाएंगे। और ये देखें फिरौन की क्या, हर जमाने के लोगों की ये हालत देख लें, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, बड़ी बड़ी शहजादियां मलकाएं गुजरी हैं, फिर उसके बाद आज कौन जानता है उनको, उनके पास कितना कुछ होगा सोच सकते हैं आप। हम तो आम से लोग हैं ना, हम में से कोई भी बादशाह मलका है नहीं, लेकिन सोचे ना आप, नूरजहां को देखें, मोतियों पे चलती थी, शीशों के महल में रहती थी, और उसकी कब्र को देख के शायर कहता है, इकबाल ने कहा, रावी के किनारे एक टूटा सा मकान है, दिन को भी जहां शब की स्याही का समा है, कहते हैं ये आराम गहे नूर जहां है, दिन में भी अंधेरा, कोई जाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जहांगीर जिस पे फिदा होता था, सदियां गुजर गई, शायर उस पे रो रहा है, कह रहा है क्या है ये अंजाम। ये वो लोग थे जिनके आगे हटो बच्चों के शोर थे, जिनके आगे नौकर खादिम हाथ बांधे खड़े रहते थे दिन रात, जिनके एक ख्वाहिश जाहिर करने पे इनके सामने चीजें पेश कर दी जाती थी, जिनको उठ के एक भी तिनका भी दौरा नहीं करना पड़ता था, जिनकी हर बात इनके बोलने से पहले ही पूरी हो जाती थी, देख लो आज किधर पड़े मैं, वीराने हैं वीराने, ऐसे मकबरे बने हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, लोग वहां पे बैठ के ताश खेल रहे होते हैं। देखो जरा ये बताती नहीं दुनिया के, दुनिया कितनी भी तुम्हारे पास आ जाए, जितनी फिरौन के पास थी उतनी भी आ जाए, तो उसके बाद भी अगर अंजाम इसका मौत है ना, तो सब खत्म हो जाएगा। एक ही जमीन के नीचे बादशाह भी जा रहा है और फकीर भी जा रहा है, इनमें विनर कौन हुआ और लूजर कौन हुआ, दुनिया के लिहाज से कोई भी नहीं, वो बादशाह विनर नहीं हो गया और वो फकीर लूजर नहीं हो गया। यार हमें तो ऐसे ही लगता है ना, हाय हाय निकलती है जिस वक्त लोगों के तायुशात देखने, हाय कितना खुशकिस्मत, हाय देखो इनकी शादी कितनी आलीशान हुई, इनके पास इतना पैसा है, किसी का मैंने पढ़ा वो उन्होंने लिखा, इनके पास इतना पैसा है कि एक दिन में 5 करोड़ खर्च करें तो तब भी मतलब पता नहीं सदियां गुजर जाए इनके पैसा खत्म नहीं होगा, इतनी मालो दौलत, लेकिन अंजाम क्या, फिर हम कैसे मुतासिर हो जाते हैं इस सबसे। अल्लाह ताला ने फरमाया कजा लिखा, हकीकत ऐसी ही है कि ये सब छोड़ के वो लोग चले गए, इसी तरह हुआ उनका अंजाम, और फिर हमने कौमे फिरौन का वारिस किसी और कौम को बना दिया। वो गए कोई और आ गए, वो गए कोई और आ गए, तुम जाओगे कोई और आ जाएंगे। हमने पक्का ही यहाँ पे अपना खैमा लगाया हुआ, हम सोचते हैं भाई यहीं पे हमने रहना है, हमारे बाद किसने आना है, इन घरों में भी मैं ही बसती रहूंगी, इसकी मलका मैं ही हूं, बस मेरे सिवा कोई नहीं। हमने तो देखा है इसी दुनिया के अंदर एक औरत एक घर की मलका बन के बैठी होती है, फिर वो जमीन के नीचे चली जाती, दूसरी आ जाती है, उसी बिस्तर पे कोई और लेट रहा होता है, उसी घर को और कोई हुक्मरानी कर रहा होता है, उसी शौहर के साथ कोई और मजे उड़ा रहा होता है। आह, ये है दुनिया। फमा बकत अलैहिमुस्समा वल अर्द वमा कानू मुंतरीन, उनके ऊपर ना आसमान रोया ना जमीन रोई, हमा कानू मुंतरीन, और हम मतलब देने वाले नहीं थे, तो क्या आसमान और जमीन रोते भी हैं? इससे बात से तो पता चलता है कि हाँ आसमान और जमीन रोते भी हैं, किसी नेक के जाने के ऊपर रोते हैं, इसलिए कि एक हदीस से पता चलता है, गो कि उसकी सनद जरा जयीफ है, लेकिन उससे पता चलता है कि आसमान में दो दरवाजे हैं, एक से इंसान की रोजी उतरती है और दूसरे से उसके आमाल ऊपर को चढ़ते हैं। जब वो मर जाता है तो वो अमल और रिस्क को गुमशुदा पाते हैं ये दरवाजे, तो वो रोते हैं। फिर आपने यही आयत तिलावत फरमाई, अल्लाह अकबर। तो इब्ने अभी हातिम में एक और रिवायत आती है, आपसे सलम ने फरमाया कि इस्लाम गुरबत से शुरू हुआ और फिर गुरबत पे आ जाएगा, यानी अजनबी था, अजनबी फिर दोबारा हो जाएगा। याद रखो मोमिन का अंजाम मुसाफिर की तरह नहीं, मोमिन जहां कहीं मुसाफिर की तरह नहीं है अंजाम उसका, जहां कहीं सफर में होता है, जहां उसका कोई रोने वाला भी ना हो, वहां भी उसके रोने वाले आसमान और जमीन मौजूद होते हैं, यानी जमीन भी रोती है और आसमान भी रोता है कि ये नेक इंसान था, इसका अमल यहां से ऊपर चढ़ा करता था, सुबहान अल्लाह, कोई वो भी इतने खुशकिस्मत है। देखें अगर एक इंसान कुछ भी ना छोड़ के गया इस दुनिया के अंदर, गुर्बत में उसने जिंदगी गुजारी और परेशान हाली में गुजारी, हम को कहते हैं हाय बेचारा, हाय बड़ा बदकिस्मत, लेकिन उसके ऊपर जमीन व आसमान रो रहे हो तो क्या खुशकिस्मती है। वो भी उसको मिस करते हैं कि इस जमीन के ऊपर वो सजदे करता था, इसके ऊपर उसके आंसू बहते थे, इस पे वो नेकी में दौड़ दौड़ के हिस्सा लेता था, और ये आसमान जहां से उसके अमल नेकियां ऊपर चढ़ती थी, वो आसमान भी रोता कि वो धंधा चला गया, जमीन कहती है वो कहाँ गया जिसके सजदे मेरे ऊपर हुआ करते थे, वो रोती है, खुशकिस्मती है ना। और एक बादशाह है ऐसे फिरौन, उसकी कौम जैसे, इतने बाग इतने चश्मे, इतना बड़ा उनका आलीशान तमद्दुन और इतनी बड़ी बादशाहत, और उनकी एक हुक्म के ऊपर क्या से क्या हो जाए, और वो मर रहे हैं जिनको लोग देख के कहें हे कितने खुशकिस्मत हैं, देखो क्या जबरदस्त जिंदगी थी इनकी, सब कुछ इसने पा लिया और उसके ऊपर ना जमीन रो रही ना आसमान, क्योंकि ये इतने बदनसीब लोग थे। देखिए आपको पता नहीं, हजरत मुआज बिन जबल, उनकी वफात शहादत के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श कांप उठा था और इतने फरिश्ते उतरे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे टिपी टो चल रहे थे, आपने फरमाया मुझे पैर रखने की जगह नहीं है, सुबहान अल्लाह। तो ये जब पत्थर भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं और जमीन और आसमान अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, तो रो भी सकते हैं, मगर उनका रोना हम नहीं समझ सकते, हम नहीं जान सकते वो कैसे रोते होंगे, कैसे वो मिस करते होंगे, उस रोना कब होता है जब इंसान मिस करता है, तो वो कैसे मिस करते होंगे इन लोगों को, कैसे ये लोग उन इस जमीन के ऊपर नरमी से चलते थे, तकबर से नहीं चलते थे, कैसे इस बंदे की मजलिसें मेरे ऊपर लगती थी, गैदरिंग्स होती थी जिनमें ये अल्लाह का जिक्र करता था, कैसे ये मेरे ऊपर इबादत कर किया करता था अल्लाह ताला की, ये जमीन मिस नहीं करती होगी। तो जिन जगहों पे हम बैठ के कुरान पढ़ते हैं, जब मैं अपना लास्ट घर छोड़ा ना, तो जो मेरा लास्ट दिन था जब वहां से जाने लगी थी उस घर से, तो जो लास्ट मैंने अमल किया वहां पे, वो उस कमरे के अंदर नफल अदा किए, और मुझे बस यही बात हो रही थी कि चूंकि उसमें गैर मुस्लिमों ने आना था उसके बाद, कि अल्लाह अकबर ये दरो दीवार जो है, ये इन्होंने इतना अरसा देखा कि इस घर के अंदर मैंने इतने अरसे तक इस कमरे के अंदर क्लासेस पढ़ाई, रमजान की रातें गुजारी, और जो भी मैंने इल्म भी लिया और फिर जो भी अल्लाह का जिक्र और नमाज की भी मेरी जगह वहां पे, तो ये दरो दीवार भी याद करेंगे इसको कि अब इन इनके अंदर कोई अल्लाह का जिक्र करने वाला नहीं होगा। तो ये दरो दीवार, क्योंकि कयामत के दिन जमीन भी गवाही देगी ना, आपने सूरह जिलजाल में आपने देखा है, यौम तो हदीस व अखबार रहा, वो अपनी खबरें बयान करेगी जमीन, तो ये जमीन इंसान की गवाही बन जाएगी, तो ये फिर रो भी सकती है, कुरान की नस है इससे, ये मिस भी फिर करती है इसका मतलब, ये सब चीज को नोट कर रही है, अपने अंदर रिकॉर्ड कर रही है। तो इंसान जहां जाता है उसकी ये नेकियां आसमान से चढ़ रही हैं, जो जहां पे भी वो करेगा, और जमीन पे जहां जाके वो नेकी करेगा उस जमीन में उसके रिकॉर्ड बन रहे हैं। और फिर ये जमीन और आसमान मिस करते हैं, तो किसी के लिए कोई रोने वाला भी ना हो, लेकिन अगर वो नेक इंसान है तो उसकी खुशकिस्मती कि जमीन और आसमान उसके लिए रोए। और दूसरा उलमा ने ये मतलब लिया है कि इससे आसमान वाले और जमीन वाले मुराद हैं, ना जमीन वाले उनके लिए रोए, ना आसमान वाले को, ना कोई फरिश्ते उनके लिए उन्होंने अफसोस किया। इतने बदबخت लोग थे ये, इतने हकीर लोग थे अल्लाह की नजर में। जमीन में भी चौपाए वगैरह भी जालिम एक इंसान होता है ना, उसे निजात पाते हैं वो, कहते हैं क्योंकि जो जालिम होता है उसकी वजह से बारिशें रुक जाती हैं, जो गुनाहगार होते हैं गुनाहों के, इंसानों के गुनाहों की वजह से बारिशें रुक जाती हैं, तो ये चौपाए वगैरह भी उसकी वजह से तकलीफ में आते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी कि मोमिन बंदा दुनिया की मुशक्कतों और तकलीफों से अल्लाह की रहमत में निजात पा जाता है, यानी वो दुनिया में तो मुशक्कतों में तकलीफों में होता है, लेकिन जब वो दुनिया से जाता है तो अल्लाह की रहमत में चला जाता है। और फाजिर फासिक जो बंदा है उससे अल्लाह के बंदे, शहर, दरख्त, चौपाए सब आराम पा जाते हैं, यानी वो जब जाता है ना तो ये सारी चीजें ना शुक्र करती होंगी कि ये इससे खलासी मिली, क्योंकि इसके गुनाह इतने होते हैं जिसकी वजह से बाकियों पे भी वबाल आता है। तो जमीन वाले और आसमान वाले मुराद भी हो सकते हैं इसमें। हमें ऐसे ही अपने आसार छोड़ने चाहिए, ऐसे ही अपने अमल छोड़ने चाहिए जमीन में, कि जमीन वाले भी या जमीन भी हमारी एक तो अच्छी गवाही दे कयामत के दिन और हमारे जाने पे रोए, ना कि हम ऐसे आसार छोड़ें कि कभी उससे लड़ रहे हैं, कभी उससे झगड़ रहे हैं, कभी यहाँ फसाद, कभी वहां फसाद, इधर की बातें, उधर लगाइयां बुझाइयां, ऐसे वैसे ऐसे अमल छोड़ के जाएंगे तो बताएं, ऐसे से तो फिर लोग शुक्र ही अदा करेंगे, इंसान भी शुक्र अदा करते हैं है ना, इंसान भी कहते हैं कि शुक्र ही है बस कम जहां पाक, शुक्र ही है गई दुनिया से मुसीबत हमारे लिए, क्या जमीन रोएगी ऐसे बंदे के लिए। तो इंसान की ख्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मैं उनमें हूं कि जो जिसके लिए पीछे अच्छी गवाहियां हों और जिसके लिए आसमानों जमीन रोएं कि अल्लाह का प्यारा बंदा था, ये भी उनकी गवाही ही है ना, जब वो रोएंगे तो ये उनकी एक गवाही है कि वो मिस कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम इब्न कय्यम फरमाते हैं के सबका अकवाम में गौर करें तो जिन अकवाम से अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें छीन ली तो उनका सबब सिर्फ एक बात होगी, अगर आप गौर करें पिछली अकवाम के अंदर सिर्फ एक बात होगी उनके नेमतें छीनने का सबब, कि उन्होंने अल्लाह के हुक्मों की मुखालफत की और उसके रसूलों की नाफरमानी की, सिर्फ ये सबब आपको नजर आएगा। इसका मतलब इंसान के जो गुनाह है ना वो इंसान से नेमतों के छिनने का सबब बन जाते हैं, ये जो गुनाह है, ये जो इंसान इधर उधर नाफरमानियां करता फिरता है और अपने आप को आजाद समझता है, इससे नेमत छिन जाती है, और इनसे भी छिन गई ये सारे बागात चश्मे बजाए इसके अंदर रहते अपनी जिंदगियां पूरी गुजारते और जाते, एक्सीडेंटल उसके अंदर यानी एक अल्लाह का अजाब आया एकदम से, ये उनके ऊपर हादसा पड़ा के आन की आन में सारे के सारे ही खत्म हो गए।
वलकद नजैना बनी इसराइल मिन अलआदाब अलमुहीन, और हमने निजात दी बनी इसराइल को रुसवा कुन अजाब से। क्या था उनके ऊपर रुसवा कुन अजाब बनी इसराइल के ऊपर? क्या उनके बच्चों को जिबा कर दिया जाता था, उनकी लड़कियों को लोंडियां बना लिया जाता था? ये किसी कौम के लिए कितनी जिल्लत की बात थी। इनसे इतनी मुशक्कत के काम लिए जाते थे और इनको रेस्ट भी करने नहीं दिया जाता, इतना इनसे सख्त काम लिए जाते थे। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के काम, आज भी देखे जो मॉन्यूमेंट्स इनके आज भी खड़े हुए हैं, आपका मतलब उन्होंने खुद बनाए थे ये? इन्हीं से तो लेबर वर्क करवाते थे वो, इनसे मटेरियल बनवाते थे, इनसे सारा ये काम करवाते थे। बहुत सख्त इनको उसमें रखते थे, मारपीट और इनके ऊपर जुल्म सितम अलग था। किसी को भी कत्ल कर देना, को पूछने वाला थोड़ी था कि बनी इसराइली को क्यों कत्ल किया, मार दिया उसको बस। उनके गुलाम थे, जो मर्जी करते इनके साथ, उनकी लड़कियों के साथ जो मर्जी सलूक करते। एक शेम है ना किसी कौम के लिए कि उसकी औरतों को सबको लौंडिया बना लिया उन्होंने, और जो बाकी रहे सहे मर्द थे उनसे ऐसे काम कराते थे। तो उनको बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने रुस्वा कुन जलील करने वाले अजाब से निजात दी, मिन फिरौन, फिरौन से, फिरौन हिमसेल्फ एक अजाब था, उससे भी निजात दी अल्लाह ताला ने। इन्नहु काना आलियम मिनल मुसरिफीन, वो था बुलंद दर्जा वाला, हद से बढ़ने वाला। आलियन का यहाँ पे क्या मतलब कि वो अपने आप को यानी बुलंद करना, मतलब जुल्मो ज्यादती में अपने आप को बड़ा करने वाला था। ये नहीं कि वैसे दर्जे में वो बड़ा आली मकाम था, जुल्म में और ज्यादती में बहुत बढ़ जाने वाला था। और फिर मुसरिफीन भी, इसराफ भी क्या होता है, हद से गुजर जाना। तो वो जुल्म और सितम भी करता था, और दूसरा उसमें हद से भी बढ़ जाता था। यानी एक उस जुल्म है वो ठीक है, वो भी जुल्म है, लेकिन एक उसमें भी टू मच करना। जैसे उनको जादूगरों को, एक एग्जाम्पल है, जादूगरों को उसने मौत का फैसला सुना दिया, ये जुल्म था, लेकिन उसके बाद उनकी मौत कितनी इबरतनाक बना दी, उसमें भी हद से बढ़, यानी जुल्म में इंतहा कर देता। अब मासूम न्यू बॉर्न बेबीज को जिबा करना हद से बढ़ जाना, वैसे ही किसी बच्चे को मार देना वो सही नहीं, मासूम है, लेकिन उसके अंदर जिबा कर देना हद से बढ़ना नहीं, इतदाल की हद पार कर देना। और दूसरा आलियन का मतलब क्या है, वैसे तो बुलंद होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो खुद को बुलंद बनाने वाला था, वो था नहीं, यानी इतना सरकश था, खुद को बहुत ऊपर करता था। अस्तग़फिरुल्लाह, वला के दिख्तर ना हूं। और अलबत्ता तहकीक चुन लिया हमने उनको, आला इल्मिन, उनके इल्म की वजह से, अलल आलमीन, तमाम जहान वालों पर। किनको चुन लिया? होम की जमीर किस तरफ जा रही है? बनी इसराइल की तरफ। तो इसका एक माना यह है कि हमने बनी इसराइल को चुन लिया उनके इल्म की वजह से तमाम जहानों पर, ठीक है। और एक और माना ये कि अल्लाह ताला ने अपने इल्म की वजह से उनको चुना, क्योंकि अल्लाह ताला का इल्म है, वो जिसको चाहे चुन ले। अल्लाह ताला ने उनको चुना, जहान वालों के ऊपर चुन लिया, यानी उनको फजीलत दी सारे जहान वालों पे। किस चीज के लिए चुन लिया? अपना पैगाम आगे देने के लिए कि वो अब ये काम करेंगे कि अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। और वो चुने हुए रहे, कब तक रहे? जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत नहीं होगी, आपकी रिसालत आने के बाद। अब उम्मते मुहम्मदिया को चुन लिया गया, अब इस उम्मते मुस्लिमा को चुना गया इस काम के लिए, अब उनकी फजीलत खत्म हो गई। उनका चुनाव तब तक था जब तक ये उम्मत नहीं खड़ी हुई उनके बाद, जब उन्होंने इतनी नाफरमानियां की। अल्लाह ताला ने पूरे सूरह बकरा में इनकी नाफरमानियों की चार्ज शीट बता दी है कि क्या क्या इन्होंने काम किए, इतने अल्लाह ताला को गजबनाक करने वाले काम किए कि ये मगदूब हो गए। अल्लाह ताला ने फिर इनसे ये मनसब ले लिया, इनको बहुत बड़ा मकाम दिया था अल्लाह ताला ने, फिर इनसे छीन के उम्मते मुस्लिमा को दे दिया। तो अल्लाह ताला ने चुना था इनको, अल्लाह ताला का चुनाव होता है इस काम के लिए, अल्लाह चुनता है लोगों को, ये वो अल्लाह का फैसला है। बाज दफा इस काम के लिए अल्लाह ताला किसी को भी चुन सकता है, बाज दफा ऐसे आप सोचते हैं इसको क्यों ये चुना गया, इसके अंदर क्या खूबी है, वो अल्लाह ताला को पता है।
मुशरिकी ने मक्का का भी यही एतराज था ना कि इनको क्यों चुना गया, इनके अंदर ऐसा क्या, ये तो यतीम थे, हम सरदारों को चुना जाना था। तो अल्लाह ताला ये नहीं देख के चुनता किसी को कि किसी की शक्लो सूरत कितनी खूबसूरत है, या किसी का पास पैसा कितना है, किसी का ओहदा कितना बड़ा है, कौन कितना बड़ा सरदार है, कौन कैसा है, इसकी बेसिस पे नहीं, या किसी का खानदान कितना ऊंचा है। बेशक अंबिया के खानदान हमेशा ऊंचे रहे हैं, लेकिन इस बेस पे नहीं चुना। मैंने आपको हदीस पहले भी बताई थी, अल्लाह ताला ने इंसानों के दिलों की तरफ नजर की तो उनके अंदर बेहतरीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को पाया, तो उनको अपनी नबुवत के लिए, रिसालत के लिए चुन लिया, और उनके बाद दिलों का जायजा लिया तो सहाबा के दिलों को सबसे बेहतरीन पाया, तो अपने नबी के साथी बना दिया उनको। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला चुनता है, उसका चुनाव है, उसने पहले बनी इसराइल को चुना, उसके बाद उम्मते मुस्लिमा को चुना, और उम्मते मुस्लिमा से ये काम लेने के लिए इनको बना दिया कि अब तुमने ये काम करना है, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का, और पैगंबरों का पैगाम आगे लेके, आखिरी नबी का पैगाम आगे लेके तुमने पहुंचाना है, अल्लाह ताला का पैगाम पूरी दुनिया तक अब तुम बताओगे, तुम पहुंचाओगे, अब कोई और नबी नहीं आने वाला। लेकिन बनी इसराइल ने भी उसका पास नहीं रखा, और उम्मते मुस्लिमा भी नहीं रख रही। तो हम जितना मर्जी समझें उसको क्यों चुना, उसको क्यों चुना, ये अल्लाह ताला का फैसला है। और दूसरा, मैंने आपको बताया जो पहला माना कि हमने इल्म की बिना पे उनको चुना, अल्लाह ताला का चुनाव, इख्तार का मतलब होता है इख्तियार करना, किसी को इज्जत देने के लिए मुंतखब करना, इज्जत दी जाती है, ऐसे नहीं चुनाव, चुनाव तो किस चीज का भी वैसे हो सकता है, लेकिन किसी को इज्जत देने के लिए अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत दी। जहान वालों, जहान वालों पे मतलब क्या, उस जमाने के जहान वालों पे, ये नहीं कि कयामत तक के। वो आता ही ना मिन अल आयाति मा फीहि बलाउ मुबीन, और हमने दी उनको निशानियां जो आजमाइश थी खुली हुई, हमने उनको वो निशानियां दी, वो आयात दी जो उनके लिए खुली आजमाइश बन गई। आयात कौन सी दी, वो नेमतें जो बनी इसराइल को मिली, उनके दुश्मन से उनको निजात दी अल्लाह ताला ने, उनके लिए समुंदर को फाड़ दिया, उनके लिए बादलों का साया किया, उनको मनोसलवा उनके लिए उतारा, ये सब थी ना निशानियां। अब ये बनी इसराइल की बात हो रही है, ठीक है, और यानी अल्लाह ताला ने उनको बहुत इस दुनिया के अंदर नेमतों से नवाजा, उनको चुना भी, उनको नेमतों से भी नवाजा, और लेकिन हर नेमत के साथ आजमाइश होती है। खास तौर पे मैदाने ती में देखें आप, कितनी नेमतें उनके ऊपर आई ना, कोई छर छुपाने की जगह थी, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर तो साया कर दिया बादलों का, ना कोई पानी पीने को था, चश्मे जारी कर दिए, गोश्त वगैरह कितनी बड़ी एक, और वो भी क्वेल का गोश्त, कितनी बड़ी एक लग्जरी आज भी समझी जाती है, वो सलवा उनको दे दिया, मन उनके लिए थे। तो नेमते आजमाइश है कि कितनी इंसान की कदर करके अल्लाह के आगे झुकता है। याद रखे जिसके पास जितनी नेमते ज्यादा है उसके लिए उसके साथ उतनी रिक्वायरमेंट है कि वो अल्लाह ताला के आगे उतना ही झुके। हदीस में आता है ना, जिसको अल्लाह ताला ने कम दिया उसके उसके लिए वो कम पे ही राजी हो जाएगा, कम अमल से ही राजी हो जाएगा। तो क्या मतलब है, जिसको ज्यादा दिया है उसके लिए ज्यादा अमल की जरूरत है, जिसको कम दिया उससे अल्लाह ताला कम अमल पे, अगर वो उस पे राजी हुआ ना जिसको कम अल्लाह ताला ने दिया, मसलन अगर किसी को किस चीज से महरूम रखा वो उस पे ही राजी है, जिसको कम दौलत दिया वो उसके ऊपर ही राजी है, अल्लाह ताला उसके भी कम अमल पे राजी हो जाएगा क्यामत के दिन। लेकिन जिसके पास बहुत ज्यादा है उसके रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। तो इनको बहुत सारी नेमतें दी गई, इनको दुनिया में शानो शौकत दी गई, अल्लाह ताला ने चुन लिया अपने काम के लिए, तो ये आजमाइश थी उनके लिए, अल्लाह ताला ने इनको भी आजमा लिया। इन्हा उलाइला यकूलून, बेशक ये लोग अलबत्ता कहते हैं, कौन कहते हैं, अब कुफारे मक्का की तरफ इशारा है, इन ही इल्ला मौतातुनल उला व मा नहनु बिमुनशरीन, के ये हमारी तो एक ही मौत है, इसके बाद हमने कोई नहीं उठाया जाना, ये जो हमने मर जाना है ना दुनिया से जाने वक्त, बस वही है, यानी क्यामत वगैरह कुछ नहीं है, दोबारा नहीं उठाना। फातु भी आबाई ना इनकुम तुम सादिकीन, तो फिर हमारे आबाओ अजदाद को जिंदा करके दिखा दें अगर आप कहते हैं कि हम ने दोबारा उठना है। हालांकि
ये वो भी जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में दोबारा उठने की बात नहीं की, कयामत के दिन की बात की है। तो कहते नहीं, यहां पे उनको उठा के दिखाओ तब हम मानेंगे, अगर आप उनको जिंदा करके दिखाएं। और ये इसलिए था कि जो है हमने मानना तो है नहीं, और ये एक बस बहाना था फिर उनको जिंदा करें ना, जबकि अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर नहीं, इस तरह जो एक दफा मौत जिसको दे दे उसको जिंदा नहीं करता। और अल्लाह ताला ने मुजजात की फॉर्म में दिखाया हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा किया, या अल्लाह ताला ने वो 70 लोग जो मूसा अलैहिस्सलाम लेके गए थे मर गए थे उनको जिंदा फरमाया, हुज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा किया 100 साल के बाद। तो अल्लाह ताला दिखाता है अपनी निशानियां, निशानियों के तौर पे दिखाता है, मगर ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हर एक को जिंदा करके दिखाया जाए प्रूव करने के लिए कि जो है कयामत के दिन भी तुम जिंदा हो सकोगे। अल्लाह ताला ने उसकी जगह बहुत सारी और बातें बता दी कि तुम उनसे देख सकते हो कि अल्लाह ताला जिंदा कर सकता है, मुर्दा जमीन को अल्लाह ताला जिंदा करता है, तुम देखते नहीं हो। बार बार इंसान को यह बताया गया तुम अपनी तखलीक पे गौर करो, जो अल्लाह तुम्हें नुतफे से पैदा करके इस तरह खड़ा कर सकता है वो दोबारा तुम्हें मार के क्यों नहीं जिंदा कर सकता। तो बहुत सारी निशानी है, जिसने मानना हो तो फिर है ना। अहम खैरुन अम कौम तुब्बा, तुम बेहतर हो या कौम तुब्बा। तो तुब्बा जो था, तुब्बा लकब था यमन के बादशाह का, जैसे फिरौन मिस्र के बादशाह का, कैसर जो था वो रोम के बादशाह का, किसरा ईरान के बादशाह, फारिस के बादशाह का लकब होता था, इसी तरह तुब्बा जो था वो यमन के बादशाहों का लकब था। तो कहा जाता है कि तुब्बा जो था वो खुद तो मुसलमान हो गया था लेकिन इसकी कौम काफिर रही थी। तो अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल दी क्योंकि वो भी तमद्दुन में बहुत बड़े हुए थे और यमन इनके करीब ही था, ये यमन की तरफ तजारती सफर भी लेकर जाते थे और उनकी कहानियां भी उनको पता थी। तुम बेहतर हो या तुब्बा के लोग बेहतर थे, यानी वो तो तबाह कर दिए गए जब अल्लाह के नाफरमान थे, वो कुफर पे थे तो अल्लाह ताला ने उनको खत्म कर दिया, उनकी नहीं तुम्हें बात, तुम बेहतर हो कि तुम्हें अल्लाह ताला ऐसे ही छोड़ देगा। ये तो ऐसे ही है ना जैसे कहा जाए कि अस्तग़फ़िरुल्लाह कि आज के जो कौम लूत का अमल करने वाले हैं वो बेहतर हैं या कौम लूत बेहतर है, वो तो उनको अल्लाह ने तबाह कर दिया, तो ये जो वो ही काम करेंगे तो क्या उसके बाद तुम बच जाओगे। तो उनको कहा जा रहा है मुशरिकीन ने मक्का को कि तुम अपने आप को बहुत बड़ी सी चीज समझते हो कि तुम वही काम करोगे तो तुम तो आराम से रहोगे, वो पिछले देखो तुमसे भी ज्यादा तमद्दुन में थे, तुमसे भी ज्यादा तरक्की में थे, तुम बेहतर हो के वो, यानी दुनियावी तरक्की में, वल्लदीना मिन कबलिहिम, वो इनसे भी ज्यादा थे तरक्की में, और इनसे पहले के लोग भी जैसे आद वगैरह या फिर रौनी को देख लें। मुशरिकीन ने मक्का का क्या था, इनके पास छोटा सी मक्का की बस्ती थी ना, कौन सा इनका इतना बड़ी तरक्कियां थी, कुछ भी नहीं था। हाँ बस काबा था वहां पे, लेकिन अदरवाइज आप उनकी तरक्कियां देखें तो कुछ नहीं थी। आप फिरौन की देखें, आज तक उनकी जो राइटिंग्स हैं उनको ये डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमें समझ आ जाए कि ये क्या लिखते थे, जो ममीफाई करते थे जो ये डेड बॉडीज को, आज तक उसका पता नहीं चला कैसे करते थे। उनके तो बहुत 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 एडवांस थे, बहुत आगे थे, मुशरिकीन मक्का तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। तो तुम क्या अपने आप को समझते हो, तुमसे तो पहले बहुत बड़ी बड़ी कौमें गुजर गई लेकिन अहलक ना हम, हमने हलाक कर दिया उनको, इन्ना हम कानू मुजरिमी, वो मुजरिम लोग थे। इसलिए अब कोई कहे नहीं जी वहां पे तो तूफान आ गया था, वहां पे तो जलजला आ गया था, ये कौम तो जमीन जमीन के नीचे ऐसे ही चली गई, पता नहीं इनके ऊपर क्या मसले आए थे, इनके पास तो बीमारी आ गई थी। नहीं, तुम ये भूल जाते थे, इन्ना हम कानू मुजरिमी, वो मुजरिम थे इसलिए अल्लाह ने उनको हलाक किया। और मैंने अभी आपको इमाम इब्ने कय्यिम की बात बताई है कि आप अगर गौर करेंगे पिछली कौमों की हिस्ट्रीज के अंदर तो आपको एक ही बात समझ आएगी कि वो अल्लाह के नाफरमान थे, रसूलों को नहीं मानते थे, तभी वो हलाक हुए। तो अब अपने आप को भी यहाँ पे रख के देख लें इसी आयत में कि क्या तुम बेहतर हो या पिछली कौम फिरौन बेहतर थी, तमद्दुन के लिहाज से, दुनिया की तरक्की के लिहाज से। अपने आप को तुम बहुत बड़ी चीज समझते हो कि आज हम 21st सेंचुरी में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो अगर अल्लाह ताला ने इन बातों की वजह से जो अगर वही काम तुम करोगे तो क्या तुम बच जाओगे, या किसी भी कौम का लिख लें, वो कौम जो हलाक हो गई है, दुनिया से चली गई है, वाइप आउट हो गई, किसी भी तरक्की याफ्ता कौम हो, वो उन्होंने नीचे खोदा तो नीचे व्हील भी मिल गया उनको, उन्होंने कहा सदियां पहले इनके पास व्हील था, हमने इसको इन्वेंट करके हमने सोचा हमने कितनी बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, क्या बड़ा ही हमने तरक्की कर ली। तुम देखो तो सही, लोग पिछले जमाने के भी कितने तरक्की याफ्ता थे, आज कहाँ है, उनके आसारे कदीमा खोदते हैं तो नीचे से निकलती हैं चीजें। तो
तो अल्लाह ताला इस चीज को हमें समझने की तौफीक दे कि इंसान की जो नाफरमानी है
वो उसको सिर्फ अल्लाह के अजाब तक ही पहुंचाती है। और ये देखिए, ये इसमें इस सूरत के अंदर और यहाँ पे आपको बहुत जगह पे यही बात मिलेगी कि मादी रौनकें और जीनतें और ये सारी जो चकाचौंध है दुनिया की, ये कहीं तुम्हें गफलत में ना डाल दे। और देखो आखरत के लिए तैयारी करो, देखो मान जाओ, देखो सरकशी छोड़ दो, अल्लाह के मुकाबले में मत आओ। वरना देख लो इतने नामवर लोग गुजरे, फिरौन जैसे, जिनका आज तक नाम लिया जाता है। सिर्फ ये कुरान में नहीं है, मतलब आप जो कुरान के नहीं भी मानने वाले उनको भी पता है ये फैरो था एक, इतनी बड़ी चीजें थी वो, लेकिन देख लो कि किधर चले गए। सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको इतना भी ना वक्त मिला कि कुछ वसीयत ही कर जाते, किसी को दे ही जाते, उनसे उनसे अपने शौक ही पूरे कर लेते, उनको तो इतना भी टाइम ना मिला। देखो अल्लाह की पकड़ आती है तो बड़ी सख्त होती है। तो आज भी जो दुनिया में बड़ा बनने का शौक रखता है और सरकशी पे उतरा हुआ है, उसके लिए इसके अंदर मैसेज है। अल्लाह ताला हम सबको इसे सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إن إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا